ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से चौथा स्कंध अध्याय एक, मनु की पुत्रियों की वंशावली, श्लोक संख्या 22, 23 और 24। मैं 24 बोला था लिखने के लिए, लेकिन लिखे 22। एनीवे, अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्धा विद्याधरो रगई बितायमान जसस तदाश्रम पदम जजो। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रवेश हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा तथा विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के साथ प्रकट होते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा आदेशित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः अयमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोस पुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् शूलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत महापुराण के द्वितीय प्रकरण यानी विसर्ग प्रकरण की ये प्रारंभिक कथाएं हैं। अब तक से ब्रह्मा जी की सृष्टि हो चुकी है। ब्रह्मा जी के सृष्टि तक जो प्रकरण है वो कहलाता है सर्ग प्रकरण। और ब्रह्मा जी जिस सृष्टि को करते हैं वो कहलाता है विसर्ग प्रकरण। तो ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र थे, उनमें से एक थे मनु। मनु का विवाह हुआ था शत्रुपा जी से। महाराज मनु के तीन पुत्रियां और दो पुत्र थे, आकुति, देहूति और प्रसूति। ये तीन पुत्रियां थी और प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। तो उनके पुत्रियों के वंशजों का वर्णन किया जाता है, उनके पुत्रियों के संबंध में यहां पर बताया गया है। तो अब तक से उनके पुत्रियों के विषय में सुन चुके हैं, अब पुत्रों में से, ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में से मनु के खानदान का हो चुका। अब यहां पर अत्रि मुनि का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मा जी जब भी कोई संतान उत्पन्न हुआ उनके, सब लोगों से एक ही बात कहे थे और वे कहे थे कि सृष्टि कार्य करो। सोइए मत हरे कृष्णा, रात सोने के लिए होता है। जिसको नींद आ रही है खड़ा हो जाए। तो सबको, चूंकि उनकी सृष्टि हुई थी सृष्टि करने के लिए, सृष्टि के पिता हैं ब्रह्मा जी, जगत पिता एक तरह से कहा जाता है। तो जो भी उनके संतान हुए सबको उन्होंने कहा कि सृष्टि करो। पहले चतुष्कुमार हुए उनको भी कहा सृष्टि करो, तो उदंड बन गए, बोले हम शादी विवाह नहीं करेंगे, हम इसमें नहीं फंसेंगे, तो ठीक है चलता है। भगवान शिव हुए, कहा तुम भी सृष्टि करो, तो भूत पिशाच का सृष्टि करना शुरू किया, बस बंद करो अब हो गया, तुम्हारा सृष्टि नहीं। यही है परंपरा सिस्टम, भगवान के कार्य में सहयोग करना। ब्रह्मा जी भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे हैं सृष्टि कर करके, और अपने पुत्रों को कह करके सृष्टि करने के लिए। आजकल जब शादी विवाह होती है तो बच्चे जाते हैं हनीमून पर, यही ना, हनीमून पर जाते हैं, अपना पति पत्नी अकेले रहे, कोई वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं हो। पहले शादी विवाह होता था तो वो लोग भी हनीमून पर जाते थे, लेकिन प्रयोजन दूसरा था। आज का प्रयोजन है इंद्रिय तृप्ति हनीमून का, और पहले लोग जाते थे इंद्रियों को ही तृप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के इंद्रिय को तृप्त करने के लिए। यदि भगवान की इंद्रियां तृप्त हो गई तो हम लोग की इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि पेट में भोजन डाल लेंगे तो पूरे शरीर के अंग स्फुर्त हो जाएंगे, पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो सब पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही यदि भगवान को संतुष्ट कर लेंगे तो हम लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, और एक बार यदि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो संसार में कोई काम बाकी नहीं रहता है। सब प्रकार से हमें भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगी न जीत पुरुष परम। निष्काम भाव से समस्त कामनाओं के साथ में जैसे भी हो हमें चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। तो पहले जितने भी शादी विवाह हुए हैं सृष्टि से लेकर के आप देख सकते हैं सब लोग हनीमून पर गए लेकिन तपस्या करने के लिए गए। जैसे हम लोग सुने कैसे कर्दम मुनि और देहूति का शादी हुआ, वो भी बहुत दिन तक तपस्या की सब लोग। तो वैसे ही अत्रि और अनसुया भी विवाह के उपरांत वे तपस्या करने गए। अष्टांग योग के द्वारा अत्रि मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी एक कामना थी और वह कामना थी कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए, भगवान के समान पुत्र हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह बड़ी अच्छी कामना है। भगवान बाप मां बनू यह अच्छा कामना है, भगवान का बेटा बनू यह अच्छा कामना नहीं है। भगवान का संतान बनने का कामना करेंगे तो संतान क्या करता है, बाप मां से मांगता है, ये भी दो वो भी दो मांगता रहता है, मांगते रहते हैं। लेकिन यदि भगवान हमारे बेटा बन जाए तो कामना क्या होती है, बेटा का सेवा करने का। और यही हमारा स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। संसार में बिना सेवा किए कोई सुखी नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं somebody serving God and somebody serving dog but everyone is serving। बिना सेवा किए हम सुखी नहीं हो सकते, सेवा करना हमारा स्वभाव है। अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है, हम स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और स्वभाव के विरुद्ध किया गया कार्य होता है सब प्रकार से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए भूख ना लगा हो और दबा कर खा लो, स्वभाव के विरुद्ध हुआ तो क्या हो जाएगा, अनपच हो जाएगा, बीमारियां उत्पन्न होगी इत्यादि इत्यादि। स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, स्वभाव के अनुगत कार्य करना चाहिए। तो जीव का स्वभाव है कृष्ण का सेवा करना। तो यह अच्छा तरीका है कृष्ण का सेवा करने का। कामना भी है तो कामना करो कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए ताकि हम निष्काम भाव से सेवा कर सके। मां का बाप का जो पुत्र के प्रति जो सेवा है उसका उपमा दिया गया है कि वो निष्काम सेवा है। पत्नी के सेवा को निष्काम नहीं कहा जाता है लेकिन मां के सेवा को निष्काम कहा जाता है। खैर आजकल के बाप मां भी अपेक्षा रखते हैं, कलयुग आ गया है, लेकिन शास्त्र कहता है कि मां बाप का जो सेवा है बच्चों के लिए निष्काम होता है। तो यह अच्छा कामना है। अत्रि मुनि का जो इच्छा था कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए तो ये कामना उनकी अच्छी थी। भगवान को देना है, भगवान से लेना नहीं बल्कि देना, और जितना देंगे उतना ही भगवान हमको देंगे। ये यथा माम प्रबदन्ते तांस थय्य भजामि हम, जो जितना देगा भगवान को भगवान भी हमको उतना ही देंगे। कभी कभी लोग घर द्वार छोड़ करके वृंदावन आते हैं, करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, घर दौलत है, सब छोड़ देते हैं और बेटे से कहते हैं कि मुझको 2000 रुपया भेज देना भगवान का सेवा करने के लिए, वृंदावन में जा रहा हूं। 2000 भगवान के सेवा के लिए और करोड़ों रुपया भी बच्चों की सेवा के लिए छोड़कर के आए हैं। तो भगवान क्या मूर्ख हैं क्या, वो नहीं दिख रहे हैं? तो जितना करेंगे उतना ही भगवान भी करेंगे, 2000 ओके उतना ही भगवान करेंगे। ये सब कुछ लेकर के आओ भगवान के पास, जैसे बलि महाराज आत्मसमर्पण कर दोगे भगवान उस रूप में देखेंगे। हम देख कितना सुंदर बात है भगवान का बाप बनना। हम सब लोगों को एक्सपीरियंस है, जो बाप माँ है उनका सब कुछ बच्चों के लिए, सब कुछ समर्पण किए हैं बच्चों को, जीते जी तक और मरने के बाद सब कुछ बच्चों के लिए। कहते भी किसके लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए अंत कर रहा हूं, कहते ना बच्चों के, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये तो भक्ति है ना। सब कुछ हमारा कृष्ण के लिए। मानस देहंगे हाँ देख चुमोर और अपिलू तू आप दे नंद किशोर, श्याम सुंदर के लिए सब कुछ है, यही भक्ति है। तो अत्रि मुनि इसी भावना से अष्टांग योग कर रहे थे। अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम आसन, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि होती है। अब जब प्राणायाम की स्थिति आ जाती है तो प्राणायाम के द्वारा योगी क्या करता है कि अपने शरीर में जो 10 प्रकार के वायु हैं उन वायुओं को शुद्ध कर देता है। जब कुंभकर्ण मारा गया तो भगवान राम के पास आया और कहा प्रभु आप तो कुंभकर्ण, अब कुंभकर्ण को नहीं, जब कुंभकर्ण मारा गया तो निद्रा देवी भगवान राम के पास आई और राम से पूछी कि आपने कुंभकर्ण को मार दिया और मैं किसके शरण में जाऊं, कहां जाऊं? तो भगवान राम ने कहा जहां कथा होती है तुम तो वहीं चले जाना, खड़ा हो जाइए, सामने सोगे मैं भी सो जाऊंगा, फिर कथा नहीं हो पाएगी, सामने मत सो प्लीज। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, नहीं वो तो जगाया लोगों को। हाँ सांग जो, तो ये 10 वायु को शुद्ध करने की जो क्रिया है वह है प्राणायाम। हम लोगों का शरीर वायु से चलता है, कोई भी वस्तु है वायु से चलता है। ये प्लेन उड़ता है उसे वायुयान कहते हैं, कार चलता है गाड़ी के टायर में हवा है तब चलता है, वायु गति का परिचायक है, गति का परिचय वायु से होता है। तो प्राणायाम के द्वारा 10 वायु को हम, शरीर के 10 वायु को हम शुद्ध कर लेते हैं। हमारे शरीर में केवल 25% जगह रह गया हवा के लिए और 75% टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो प्राणायाम क्या करता है, उस टॉक्सिन को साफ करता है। जब टॉक्सिन साफ हो जाएगी, हवा रहेगा केवल, तो बेग होगा और बेग होता कहीं फ्लोट कर सकते हो। इसीलिए पहले योगी लोग कहीं से बूम वहां से आ गए, यहां से आ गए, छोटा हो गए बड़ा हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। प्राणायाम यदि शुद्ध किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब बाहर कोई वस्तु नहीं चाहिए, यानी खाना पीना सोना किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस वायु पर। जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो वायु लेना भी छोड़ दिए थे योगी लोग, वैसे ही अत्रि मुनि केवल वायु पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और जब उनका योग साधना तप परिपूर्ण हो गया, परिपक्व हो गया, तब वहां पर भगवान आए। भगवान के एक गुणावतार हैं, भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। कौन कौन अवतार हैं? पुरुषावतार, मनवंतरावतार, लीलावतार, गुणावतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार, और कोई बाकी रह गया? कलयुग अवतार, रजनी से ज्यादा जिसे एनीवे तो भगवान के गुणावतार कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। कोई कह सकता है कि अत्रि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश का कामना क्यों किए, मतलब इस सृष्टि में कामना क्यों किए, अन्य के लिए कामना क्यों नहीं किए, नारायण के लिए कामना क्यों नहीं किए इत्यादि इत्यादि। वेल ए तपस्या करने गए थे और तपस्या कर यही उनकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पुत्र बने, पुत्र के रूप में आए। और एक आचार्य कहते हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी भगवान की वो विष्णु तक ही सीमित थी। बहुत लोग हैं संसार में जो समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सिंह श्रेष्ठ हैं, उनसे कोई बड़ा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे श्रेष्ठ हैं। कहते नारायण कृष्ण राम ये सब विष्णु के अवतार हैं, कहते हैं सब विष्णु के अवतार हैं, सबसे श्रेष्ठ ही तीन लोग हैं। तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ इस संसार में श्रेष्ठ हैं। अपने घर में कुत्ता भी शेर बन जाता है, तो ये लोग अपने घर में हैं। ये संसार जो है यहां के प्रेसिडेंट यही लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का पोर्टफोलियो समान है, कार्य रूप में तीनों बराबर हैं। एक जो है सृष्टि करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। तीनों में थोड़ा भी भेद नहीं है कार्य रूप में। कुछ भक्त लोग जिन्हें सैद्धांतिक रूप से पता नहीं चलता, कहते हैं विष्णु महान है क्योंकि वो पालन करते हैं। विष्णु महान है पालन करने से नहीं, महान है। इसका मतलब है नहीं कि शिव छोटे हो गए संहार करते हैं, नहीं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हेड पेट और पैर तीन मान लिया जाए, ये तीनों अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते केवल हेड ही है, पैर इंपॉर्टेंट है, पैर काट के फेंक दो है? कोई पैर बड़ा है सब चलते हैं इससे, पैर इंपॉर्टेंट है हेड काट के फेंक दो, नहीं। ये तीनों की जरूरत है, तीनों अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है। शरीर सम्यक रूप से रह सकता है जब ये सम्यक रूप से रहे, पैर ठीक रहे। पैर में घुटना में दर्द हो तो कैसे कीर्तन में नाचेंगे? नाच सकते हैं कीर्तन में? नहीं नाच पाएंगे, चल भी नहीं सकते। पेट ठीक ना हो तो भजन कहां होगा, दिन भर दिमाग मन पेट पर ही लगा रहेगा। और वैसे मन ठीक ना हो तो पैर और पेट ठीक होने के बाद भी व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। तो अपने अपने जगह पर सब इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुणावतार हैं। जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कहीं देखें भगवान का कोई फोटो जहां पर अकेले भगवान हो? कोई फोटो बताओ तो आप। जो बोलेगा कि भगवान का कोई ऐसा छवि या भगवान जहां अकेले हैं तो उनको आज महाप्रसाद दिया जाएगा, कोई है बताने वाला? नहीं। प्रभुपाद जी कोई नहीं है तो किस साथ में गाय रहती है? यदि वो भी नहीं तो बांसुरी है। कृष्ण अकेले कहीं नहीं है, भगवान अकेले नहीं रहते। अकेलापन काटने दौड़ता है, साइंटिस्ट लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लोननेस द बिगेस्ट डिजीज। आज संसार में लोग मर रहे हैं, सबसे तड़फ रहे हैं, दुख है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। कहते हैं समय नहीं कटता है, चार लोग रहते हैं समय कट जाता है। अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, पांच छह भक्त लोग बैठकर कीर्तन करेंगे, पता नहीं दिन कैसे बीत गया। अकेले बैठे रहे तो पेट पर ही ध्यान रखे, अरे भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है, और निर्जला एकादशी गया काम से। इसीलिए शास्त्र कहता है संग करो, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र को, संग होना चाहिए। एनीवे भगवान अकेले नहीं है, भगवान जाते भी हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ में उनके पार्षद जाते हैं। यहां पर इस श्लोक में देखा जाता है कि जब भगवान आए ब्रह्मा विष्णु और महेश अत्रि मुनि के आश्रम में, तो वहां पर कौन कौन आए? तो कहते हैं अप्सरा, स्वर्ग लोक की। ये किसका मोबाइल? मोबाइल को कौन बंद रखिए। स्वर्गलोक से अप्सराएं आए, मुनि, नारद आदि मुनि लोग भी वहां पर पधारे, गंधर्व, गंधर्व लोक के वासी आए, सिद्ध, सब तपोलोक के वासी, विद्याधर, अन्य देवता था विद्याधर आए, उर्गई था नाग लोक के लोग वहां पर आए। बितायमाना जससः, क्यों आए? उनके ख्याति के चलते। सब लोग आए उनके ख्याति के चलते। देहांत सबका होगा, सब मरने वाले हैं, लेकिन जिसका जस होता है उसकी मृत्यु नहीं है। जस है, जिसका जस होता है वो हमेशा जीवित रहता है। तो हमें जसवान होना चाहिए। कृति, कृति जस्य सजीवती, जिसके पास कृति है वो हमेशा जीता रहता है। और सबसे बड़ा कृति जो है वह है कि लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना, सबसे बड़ा कार्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा दयालु है, सबसे बड़ा दानी है, महाअवदान्य है। जो स्वयं केवल अपने भक्ति करता है, स्वार्थी है। प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं कि स्वार्थ वर्ष तो जंगल में जाते हैं, एकांत में मौनी भाव बनकर तपस्या करते हैं। हम लोग मौनी बाबा नहीं है, हम जाते हैं यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सब जगह जाकर के कृष्ण उपदेश करते हैं, मुनि बाबा हम लोग नहीं। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार से ख्याति बढ़ती है, कृति बढ़ती है। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी प्रचार किए, आज पूरे संसार में उनका गुणगान गाया जाता है। तो प्रचार करना ही भक्तों का जीवन होना चाहिए। जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, ये वृंदावन में वास भी एक प्रचार है। जैसे षट गोस्वामी गण मंडलपति थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम, मंडलपति। नवाब हुसैन के कोई कोषाध्यक्ष था, कोई प्रधानमंत्री था, बड़े बड़े लोग थे, बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन त्यक्त्वा तूर्णमशेष, सब कुछ त्याग दिए और वृंदावन आ करके निवास करने, वृंदावन का कोठी नहीं बनाए, वे लोग ब्रज में वास कर रहे थे। ये दुख की बात है कि आजकल के कोठियां बन रहे वृंदावन, पहले बंद था, अभी बंद बन रहा है, कंक्रीट जंगल बन रहा है। मुझे याद है कि जब मैं ज्वाइन किया था उन दिनों का वृंदावन 1976 का और आज का वृंदावन, लगता नहीं है कि वृंदावन है। ये हम लोगों का मंदिर लास्ट मंदिर था, लास्ट कोई बिल्डिंग था, बन महाराज का कॉलेज था बस, तो ही था और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। इधर तो रिक्शा वाले शाम को आते भी नहीं थे। और ऐसा बात नहीं देख, साधुओं की कमी थी, बहुत साधु थे उन दिनों भी, बहुत साधु थे। आजकल तो वृंदावन में ज्यादा व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं, साधु लोग कम बनते जा रहे हैं, यहां तक भक्त लोग व्यापारी बनते जा रहे हैं। ये वृंदावन वास से प्रचार नहीं होगा। वृंदावन वास करें रिनाउंसिएशन के मूड में, षट गोस्वामियों के मूड में, तब तो सही वृंदावन वास है। प्रचार करने के लिए भक्तों का जीवन एकमात्र है केवल प्रचार के लिए, प्रचार का जीवन, यही असली जीवन है। और प्रचार से ही कृति बढ़ती है। जितना जो प्रचार करता है, अरे कितना अच्छा प्रचार कर रहा है। तो अत्रि मुनि का जस था, और उनके जस की कृति तीनों भुवनों में गाई जाती थी। और देख सकते हैं कि तीनों भुवन के देवता लोग यहां पर या तीनों भुवन के निवासी यहां पर आए हुए हैं। बड़े बड़े मुनि नारद जी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। आश्रम पदम जजु, उनके आश्रम पर पदार्पण किए आए। अत्रि मुनि एक पैर पर तपस्या कर रहे थे। एक आय का श्लोक है, इसी श्लोक पर प्रभुपाद जी एक चित्र बनवाए हैं। आय के श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, मैं वही सोच रहा था, लेकिन उसी श्लोक का चित्र प्रभुपाद जी बनवाए हैं, जहां पर अत्रि मुनि एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, नारद मुनि हैं, सब देवता लोग हैं वहां पर और अत्रि मुनि प्रणाम करने जा रहे हैं। तत्तादुर्भाव संयोग विधोति तमा मुनि उतिष्ठ उतिष्ठन एक पादे न दर्श विविधान। जब वे लोग आए सब साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता सब साथ में आए, नारद मुनि भी साथ में आए, मुनि इन लोगों को देखे और वे एक पैर पर खड़े थे। वे ज्यों ही उनको देखे वे बड़े हर्षित हुए और उनके नजदीक पहुंचे। ये लोग आए, कैसे आए थे इसका वर्णन, अब उनको देख करके ये क्या किए उसका वर्णन है, कैसे आए थे 24 श्लोक में है। प्रणम्य दंडवत भूमौ, प्रणाम किए। अत्रे मुनि बहुत उच्च कोटि के थे, उनके सामने ये विद्याधर गंधर्व चारण कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी सब लोगों को प्रणाम किए। प्रणाम दो प्रकार से की जाती है, यदि कोई कद में बड़ा हो तब, या पद में बड़ा हो तब, तीसरा नहीं। कद मतलब उम्र में, कोई उम्र में बड़ा हो तब, या कोई सीनियर डिवोटी हो पद में बड़ा हो, पोजीशन से नहीं, पद में जो बड़ा सीनियर है हमसे पहले, जैसे सनातन गोस्वामी कद में बड़े थे रूप गोस्वामी से, लेकिन रूप गोस्वामी सब छोड़ कर करके और पहले भगवान चेतन महाप्रभु का शरण लिए थे, इसलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को हमेशा अपना प्रभु कहते थे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना प्रभु कहते थे। प्रभु मतलब सम्मान, प्राम योग। तो कोई कद में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, तो ये देवता लोग आखिर स्वर्ग के निवासी हैं, और हालांकि अत्रि मुनि भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के साथ में आए थे, तो जैसे भगवान हैं उनके साथ में आए हुए, उनका भी सम्मान वैसे ही मिलता है जैसे भगवान, जैसे हम लोगों को आज सम्मान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? शास्त्र कई एक प्रकार से वर्णन किया है, जैसे रूप गोस्वामी और उनके भाई बल्लभ जब भगवान चेतन महाप्रभु से मिले और बल्लभाचार्य उन लोगों को आमंत्रित किए गए, चेतन महाप्रभु को आमंत्रित करने के लिए प्रयाग गए थे, जब रूप सनाता रूप और बल्लभ दूर से ही उनको प्रणाम किए, शशांक दनोत प्रणाम किए, और बल्लभ और रूप को आलिंगन करने के लिए आ रहे थे बल्लभाचार्य, ये लोग दूर भाग रहे थे, कह रहे कि आप हमको स्पर्श न कीजिए, हम लोग अछूत हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को कहे कि हाँ हाँ वो लोग नीच जाति के हैं, अछूत हैं, उन लोगों का स्पर्श आप मत कीजिए। वो बल्लभाचार्य को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग निरंतर कृष्ण नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो बल्लभाचार्य कहते हैं कि अरे जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वो अच्युत कैसे हो सकता है, वो तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। अहो बत सपचो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नु नार्जा ब्रह्मान चुरणान्ति गृणन्ति ते। अहो बत सपचो गरीयान, सपचो गरीयान, स्वपच मतलब चंडाल कुत्ता खाने वाला, स्व मतलब कुत्ता, पच मतलब खाने वाला। यदि कोई चंडाल परिवार में जन्म लिया है, यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा के अग्रभाग पर भगवान का नाम निरंतर आ रहा हो, ते पुस्तपस्ते जुहुसस नार्ज, उसने सब प्रकार का तपस्या कर लिया, सब दान कर लिया, सब जोग कर लिया, सब कुछ कर लिया, ब्रह्मान चूर्णान गृहंत ये ते, वैसे फिर जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के और भजन नहीं करता, वो कहा है कि उनको उनका छोड़िए, चंडाल परिवार में जन्म कर कोई भगवान का नाम लेता है तो श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से भक्ति का वहां पर गुणगान किए और उन लोगों को भी आमंत्रित किए, उन लोगों को भी वैसे ही सम्मान दिए जैसे भगवान चेतन महाप्रभु को दिए। तो भक्ति करने से लोग सम्मान देते हैं, बड़े बड़े लोग हम लोगों के सम्मान लोग देते हैं, कहते स्वामी जी हरे कृष्ण, छोटा बच्चा होगा तिलक गया स्वामी जी हरे कृष्ण, छोटे बच्चे को भी लोग करते हैं, क्यों करते हैं? अपने घर में जमाई सबसे बड़ा होता है, लेकिन साधु आ गया तो जमाई भी साइड में हो जाएगा, पहले साधु खिलाओ, है ना? क्यों लोग करते हैं? क्योंकि भगवान से संबंध है इसलिए। तो उसी प्रकार से अत्रि मुनि सब लोगों को प्रणम्य प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए? प्रणाम कई एक प्रकार का होता है, एक दंडवती प्रणाम। दंडवती प्रणाम में दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है सष्टांग और एक कहलाता है अष्टांग। दंडवत दंडा के समान, यहां पर दंडवत का वर्णन किया, प्रणम्य दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किए, सष्टांग दंडवत किए, हम लोग करते हैं दंडवत भूमौ। उसके बाद कृतांजलि होता है, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, यही प्रणाम कहलाता है। उसके बाद अर्ध प्रणाम, जैसे स्त्रियां करती हैं, हम लोग भी झुक करके प्रणाम करते हैं। आजकल नया प्रणाम है, नया उसमें लग गया है प्रणाम करने का, अलग अलग। एनीवे, यहां पर जो प्रणाम है दंडवत का क्या, प्रणम्य दंडवत भूमौ उपहते अरहणम, और प्रणाम गिर करके देखिए साथ साथ अरहणम यानी पूजा के सामग्री के साथ में, यानी शंख भी था, अगरबत्ती भी था, फूल भी था, चामर भी था, पूजा का सब सामग्री था, यानी प्रणाम करने के बाद पूजा की। जब भगवान या वैष्णव घर पर आए तो ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, खाने खिलाने में स्वयं खिलाना चाहिए। आजकल लोग बुलाते हैं साधु लोग, महाराज हमारे घर पर आइएगा प्रसाद खाने के लिए। साधु हाँ ठीक आएंगे, कितने भक्त? चार भक्त। अच्छा ठीक है, चार भक्त आएंगे। पहले था कि साधु घर में जिस दिन आ जाए, आने वाला हो तो पूरा घर का लिपाई पुताई कर कर करके, हमने देखा है कैसे होता था गाय के गोबर से पूरा। आजकल तो गाय के गोबर से कोई लिपाई नहीं कर सकता है, चूना से लिपाई। एनीवे, कम से कम साफ सुथरा, करते थे और स्त्रियां भोजन बनाती थी, पुरुष लोग भोजन कराते थे, कुछ लोग सेवा करते थे, कुछ लोग बैठ करके चमर डुलाते थे, पंख इस प्रकार से अतिथि सत्कार करते थे वैष्णव का, साधु का, भगवान का। आजकल तो महाराज जी लोग हैं कुकिंग करने वाले हैं, महाराज गरम गरम पकौड़ा महाराज को खिलाओ, प्रभु जी लोगों को खिलाओ, तो महाराज बनाते हैं, सर्विस भी महाराज करते हैं, तो तुमको क्या फल मिला? तो बुलाए कि साधु लोगों को समझते पैसा देकर के साधु लोगों को खरीद सकते हो? नहीं। जब भी साधु घर पर आए तो स्वयं वह कार्य करना चाहिए। भगवान जब द्वारका में थे तो स्वयं करते थे, नारद जी आए, कोई आया द्वारका में तो भगवान उनका पैर धोते थे, सुदामा जी आए थे तो भगवान नौकरों को नहीं बोलेंगे पैर धोते स्नान करा दो, नहीं, भगवान स्वयं पैर धोए, रुक्मणी जी स्वयं चमर डुला रही थी। तो अतिथि सेवा का यह नियम है। तो वैसे ही पूजा पाठ आदि कर कर करके इन लोगों का सम्मान किए अत्रि जी वहां पर उपस्थे अरहणम अंजलि और प्रणाम कर करके एक कर कर फिर हाथ जोड़कर खड़ा हुए, यानी हाँ जो खड़ा मतलब पूछ रहे हैं कि और क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब आगे बताए कैसे ये लोग आए थे। बृहंस सुपर्ण अस्था अस्थान वै स्वयचिन्ह चिन्हितान, ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ये आए थे। कैसे आए थे? वृष, वृष मतलब बैल, तो बैल पर कौन आता है? भगवान शिव। हंस ब्रह्मा जी और सुपर्ण यानी गरुण तो विष्णु जी। तो ये लोग अपने वाहन पर आए थे। आचार्यगण कहते हैं कि जो वृष हैं बैल वो धर्म के प्रतिनिधि हैं, जो हंस है वह ज्ञान का प्रतिनिधि है और जो गरुड़ जी हैं वो भक्ति के प्रतिनिधि हैं। तो वहां पर अत्रि मुनि के आश्रम में धर्म ज्ञान और भक्ति ये भी आ गई। केवल इन लोगों के आने से, ये लोग आए तो लेकर के आए। शास्त्र कहता है किसी के पास जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, स्पेशली 6 लोगों के पास। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। साधु महात्मा के पास जाएं खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर के जाएं। किसका बच्चा रो रहा है? राजा के पास जाएं खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर के जाएं। ज्योतिषी के पास जाएं खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर जाएं। डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाएं खाली हाथ ना जाएं। पर आजकल डॉक्टर पहले ही फीस मांग लेते हैं, पहले से नहीं था। और सगे संबंधी के जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह कुछ लेकर जाना चाहिए, फल वगैरह कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर अत्रि मुनि साधु हैं, इनके पास आए हुए हैं, ये लोग भी खाली हाथ नहीं आए हैं। तो मात्र उनके वाहन जो थे वही देने वाले थे, जैसे वृष से धर्म की प्राप्ति। ऐसा बात नहीं था कि अत्रि धार्मिक नहीं थे, लेकिन धर्म और वृद्धि हुआ, ज्ञान का वृद्धि हुआ और भक्ति का वृद्धि हुआ। साथ ही साथ उनके चिन्ह भी उनके साथ थे, यानी भगवान शिव का चिन्ह क्या है? त्रिशूल और डमरू, डमरू भी है ना, और तीसरा सांप। तो सांप, डमरू, त्रिशूल ये सब चिन्ह है, और चंद्रमौली भी कहलाते हैं ना, चंद्रमा भी। तो ये सब साथ में आए थे। इसका भी प्रमाण है कि ये क्या उद्घोषित करते हैं, ये डमरू त्रिशूल चिन्हित क्या करते हैं। उसी प्रकार से आए थे ब्रह्मा जी, वो भी अपने चिन्ह के साथ थे। उनका चिन्ह क्या है? कमंडलू और कुश, कुश ग्रास ब्रह्मा जी रखते हैं, कुश और कमंडलू ब्राय राजमाला भी रखते हैं कभी कभी। सृष्टि करते हैं, माला कहां जप करते हैं? वो तो भगवान शिव माला जप करते हैं, कोई काम नहीं है उनको, लास्ट में काम है। और भगवान विष्णु आए तो वो भी अपने चिन्ह को लेकर के आए, और उनका चिन्ह क्या है सब लोग जानते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इन चिन्हों का भी आचार्य गण वर्णन किए हैं कि चिन्हों का भी अलग अलग काम है, जैसे शंख चक्र गदा और पद्म। शंख जो है वो भक्तों के भक्ति के उत्साह का वर्धन करता है, भक्ति वृद्धि उत्साह वृद्धि का काम शंख करता है, शंख से उत्साह बढ़ता है। महाभारत में जब दुर्योधन दुखी हो गया था और पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के पास जा रहा था, तो उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म शंख बजा दिए, उसके उत्साह को बढ़ाने के बजाय थे, लेकिन सेना के सेनापति थे ना, तो शंख बजा दिए मतलब कि युद्ध शुरू, लेकिन वो किए थे उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो शंख उत्साह वर्धक है। उसके बाद कमल शांति वर्धक है, शांति सुख शांति के लिए। और चक्र और गदा असुरों के दमन के लिए। वैसे ही ब्रह्मा जी का कुश जो है वह शुद्धता का घोतक है। हम लोग भी आरती उरती करते हैं तो कुश के चटाई पर, कुश जो है शुद्धता का घोतक है। जो कमंडलू है वह रक्षा का घोतक है। ब्रह्मा जी कमंडलों से रक्षा कर लेते हैं, जैसे कई प्रकार की रक्षाएं होती हैं, जैसे जगन्नाथ जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था मंदिर का, तो महाराज इंद्रदुम्न बड़े दुखी फील कर रहे थे कि विद्यापति कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ हैं, इत्यादि लोग कहाँ हैं। और विश्ववसु कहाँ है इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडलू का जल निकाल करके और उन लोगों पर छिड़क दिया, जिसे रक्षा किया। किसका रक्षा किया? महाराज इंद्रदुम्न के दुख को। और वहीं से जो विष्णु शर्मा थे वो विद्यापति के रूप में आ गए, तो जो जितने वहां पर सब लोग प्रकट हो गए। एनीवे उसी प्रकार से भगवान शिव के ये जो जैसे त्रिशूल है, सर्प है और डमरू है, ये तीनों घोतक हैं, लेकिन वैष्णव के आचरण के लिए नहीं। भगवान शिव पर शोभा देते हैं, अपने लिए नहीं। मैं भूल रहा हूं, बहुत पहले पढ़ा था, उसका भी कुछ घोतक है, मुझे भी याद नहीं रहा है। और ऐसे भी 9 बज गया, समय हो गया प्रसाद का, तो इसको आए? लेकिन हमारा अभी भी मीटिंग है 10 बजे से, तो हमारे और कुछ काम भी करना है। मैं कुछ प्रयोजन के लिए आया हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कथा का विराम यहीं पर दूंगा। एनीवे इस प्रकार से ये तीनों आए और उनके द्वारा अत्रि मुनि के द्वारा सेवित हुए, और अत्रि मुनि की इच्छा को विलोचन गए, उसके प्रणाम स्वरूप अत्रि मुनि और अनसुईया को 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय और भगवान शिव से दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी से सोम यानी चंद्रमा चंद्र, ये 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रश्न नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं देखा नहीं उधर घड़ी पर, 9 बज गया। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय।